चार बोल बड़े अनमोल पाठ माइनस तीन आत्मदर्शन में जीना सम्यक दर्शन है। 21 अगस्त को जैन स्थानक गुड़मंडी में जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया कि आत्मदर्शन में जीना सम्यक दर्शन है और दूरदर्शन में जीना मिथ्या दर्शन है। अपनी इंद्रियों और प्राणों का संशोधन किया जाए, गलतियों का परिष्कार किया जाए, यानी अपने प्राणों में आए कर्मों का, पापों का रिफाइंडीकरण हो, और जब प्राण शुद्ध हो जाएंगे तो उन प्राणों में परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाएगी। यह है प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि परमात्मा की प्राणों में प्रतिष्ठा। जिस प्रकार किसी सामान्य व्यक्ति को भी घर पर बुलाया जाता है तो घर की सफाई की जाती है, तो परमात्मा को प्राणों में बिठाने के लिए प्राण भी साफ होने चाहिए। स्वार्थ, मोह, विकार, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष से विकृत हो चुके हैं, उन्हें ध्यान योग के माध्यम से साफ किया जाए। हम सफाई जहां होनी चाहिए वहां तो कर ही नहीं रहे हैं, और जहां नहीं होनी चाहिए उसको साफ करने में लगे हैं। मन साफ तो बल प्राण साफ। पर्युषण पर्व के 8 दिनों में हर व्यक्ति के पास एक समय तो ऐसा आता ही है जब उसके प्राणों में परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाए। वो मुहूर्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो 8 दिनों में कब आएगा इसका पता नहीं, पर आएगा अवश्य। अतः 8 दिन सावधान रहने की जरूरत है। 8ों दिन पूरे समय मन को शुद्ध रखा जाए, खाते पीते उठते सोते सभी समय सावधान रहा जाए। भगवान ने श्रमणोपासक 4 प्रकार के बतलाए हैं, जो विहा समनो वासगा पनत्ता, अम्मा पी समाने, भाई समाने, मित समाने, सोविया समाने, 1 माता पिता के समान, 2 भाई के समान, 3 मित्र के समान, 4 सौत के समान है। 1 जो श्रावक बिना किसी भेदभाव के विनय पूर्वक परमार्थ बुद्धि से श्रमणों की सेवा भक्ति करते हैं, उन्हें संयम मार्ग पर बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता देते हैं, उनकी वितरागता को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे श्रावकों को शास्त्रकार माता पिता तुल्य श्रावक मानते हैं। 2 जो श्रावक साधुओं से प्रेम तो रखते हैं किंतु तत्व विचार की वेला में कुछ कठोर वचनों का भी प्रयोग कर देते हैं और समय आने पर अतीव वात्सल्य भी प्रकट करते हैं, वे श्रमणोपासक भाई के समान होते हैं। 3 जो कष्ट के समय संतों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, उनके संयम मार्ग में तथा तप साधना में उनके द्वारा होने वाले ज्ञान के प्रकाश में एवं संथारे आदि में सहायक होते हैं, वे श्रमणोपासक मित्र के समान होते हैं। ऐसे श्रमणोपासक मित्र की तरह दोषों का आच्छादन करने वाले तथा गुणों का प्रकाश करने वाले होते हैं। 4 जो संतों एवं सद्धर्मियों के गुणों को न देखकर केवल उनके दोष ही देखते रहते हैं, उन्हें हानि पहुंचाने के प्रयत्न में रहते हैं, उनकी निंदा चुगली करने वाले, छिंद्रान्वेषी, अनसंत बोलने वाले, ईर्ष्या द्वेष में संलग्न रहने वाले हैं, वे श्रमणोपासक सौत के सदृश होते हैं। श्रमणोपासक के इन 4 रूपों के द्वारा सूत्रकार ने अप्रत्यक्ष रूप से श्रावकों को संतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस कर्तव्य का निर्देश किया है। इन 4 रूपों में ऐसी उपमाएं प्रस्तुत की गई हैं जिनके द्वारा पूर्व पूर्व की श्रेष्ठता और उत्तर उत्तर की हीनता स्वतः आभासित हो जाती है। फिर दूसरी प्रकार से भी 4 प्रकार के श्रमणोपासक बताए गए हैं। जो विहा समनवास का पनत्ता, अद्दाक समाने, पदाक समाने, खानु समाने, खरकंटक समाने, आदर्श कांच के समान, पताका के समान, ठूंठ के समान, खरकंटक के समान, 1 दर्पण के समान, श्रावक जैसे दर्पण समीपस्थ पदार्थों का प्रतिबिंब स्पष्ट ग्रहण करता है, वैसे ही जो श्रावक संतों के द्वारा उपदिष्ट स्वसमय, परसमय, उत्सर्ग, अपवाद, जिनकल्प, स्थविरकल्प, उपदेश, शिक्षा, सिद्धांत संबंधी भावों को यथार्थ रूप से ग्रहण करता है, वह श्रावक दर्पण के तुल्य होता है। 2 पताका समान, श्रावक पताका चंचल होती है और वह जिस दिशा की ओर वायु चलती है उसी ओर फहराने लग जाती है, वैसे ही जो श्रावक जैसी देशना सुनता है उसी की ओर झुक जाता है, जिसकी श्रद्धा एवं विचारधारा चंचल एवं अस्थिर है, वह श्रावक पताका के तुल्य होता है। ऐसे ही श्रावकों के लिए गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास कहा जाता है। 3 खानु समान, श्रावक खानु शब्द के 3 अर्थ है, स्तंभ, खूंटा और ठूंठ। हो सकता है शास्त्रकार ने 3ों अर्थों को लक्ष्य में रखकर ही श्रावक को खानु सदृश कहा हो। आय स्तंभ सदृश स्तंभ को स्थापत्य कला में आधारभूत सुंदर तत्व कहा जाता है, क्योंकि छो झोपड़ी से लेकर विशाल प्रासाद तक में ऊपरी मंजिलों के आधार स्तंभ ही हुआ करते हैं। इसी प्रकार जिन संस्कृति रूप भवन के स्थायित्व में पूर्ण योग देने वाले श्रावक स्थानु सदृश श्रावक कहला सकते हैं। खानु अपनी दृढ़ता के लिए भी तो प्रसिद्ध है। अशोककालीन स्तंभ शताब्दियों से आंधियों, तूफानों और भूचालों की चुनौतियों को विफल बनाते हुए अपने गौरवान्वित सिर को ऊंचा उठाए खड़े हैं। इसी प्रकार जो श्रावक मत मतांतरों की चुनौतियों को विफल बनाते हुए अपनी धार्मिक दृढ़ता के बल पर संस्कृति के सिर को गौरव से ऊंचा उठाए रखते हैं, वे श्रावक भी खानुसम श्रावक कहलाते हैं। स्तंभकला अपने सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुस्तंभी भवन आज भी दर्शकों की सौंदर्य पिपासा को शांत करते रहते हैं अपनी सच्चरित्रता, दानशीलता, संयम निष्ठा, सर्वभूत हितेच्छा और संयम निष्ठ सेवा से। जिन संस्कृति के सौंदर्य का संवर्धन करने वाले श्रावक भी तो खानु समान श्रावक ही कहे जाएंगे। खानु जड़ भी है, हो सकता है संयमी महापुरुषों के उपदेशों का प्रभाव जिस पर न पड़ता हो, ऐसे जड़ बुद्धि श्रावक को भी स्थानु समान श्रावक कहा गया हो। ई खूंटे के सदृश श्रावक, खूंटे की उपयोगिता वैविध्यपूर्ण है, हो सकता है उसी वैविध्य को लक्ष्य में रखकर श्रावक को खूंटे के समान कहा गया हो, जैसे कि क खूंटे के साथ बंधा हुआ पशु नियंत्रित रहता है, पराय खेत नहीं चरता, पास आने वाले को मार नहीं सकता, इसी प्रकार मन रूपी पशु को नियंत्रित रखने वाला श्रावक खूंटे के सदृश ही तो कहलाएगा। ख खूंटे गाड़े जाते हैं और उनके साथ बंधी रस्सियों के सहारे बड़े बड़े खेमे टिके रहते हैं, इसी प्रकार श्रमण संस्कृति के विशाल खेमे को ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की रस्सियों के सहारे स्थिर रखने वाले श्रावक भी खूंटे जैसे ही हो सकते हैं। गत सीमा प्रदर्शित करने के लिए सीमा सूचक खूंटे गाड़ने की प्रथा आज भी विद्यमान है। इसी प्रकार सांस्कृतिक मर्यादाओं के साकार रूप श्रावक भी तो खूंटे के ही समान कहे जा सकते हैं जो सांस्कृतिक सीमाओं की रक्षा करते हैं। घर जिस स्थान पर बहुत अधिक खूंटे गड़े हुए हों वहां चलने वाले यात्री को खूंटे सावधान होकर चलने के लिए बाध्य भी कर देते हैं। इसी प्रकार जो श्रावक जीवन पथ पर चलकर धर्म लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले साधकों को सावधान करते रहते हैं, उनको उपमा पमाय का प्रभु संदेश सुनाते रहते हैं, वे श्रावक भी खूंटे के समान कहला सकते हैं। आगत हो सकता है खूंटे के समान जड़तापूर्ण निष्क्रिय जीवन जीने वालों की ओर भी शास्त्रकार ने इस विशेषण द्वारा संकेत किया हो। ई ठूंठ सदृश ठूंठ सूखा वृक्ष है, यह वृक्ष होते हुए भी वृक्ष नहीं, फलों से रहित, पत्रों से रहित, पुष्पों से हीन, रस से वंचित, केवल गीधों एवं चीलों से सेवित ठूंठ वृक्ष कहलाने की योग्यता खो देता है। इसी प्रकार सेवाभाव से रहित, साधना में जीवन से हीन, धर्म रस से वंचित, दुष्टजनों से सेवित व्यक्ति श्रावक कुल में उत्पन्न होने के नाते श्रावक होते हुए भी इतना ही श्रावक होता है जैसे ठूंठ, ऐसे श्रावक को ही खानु श्रावक कहा जा सकता है। चार, करकंटक समान श्रमणोपासक, एक जैसे कठोर कांटा फंसे हुए वस्त्र को फाड़ता है और साथ ही छुड़ाने वाले पुरुष के हाथों में चुभ कर उसे दहखित करता है, वैसे ही जो श्रमणोपासक समझाने वाले को भी कठोर वचनों से दहखित करते हैं, जिनके वचन ही तीक्ष्ण कांटे हैं, वे कभी कभी दूसरों के पर्देफाश भी कर देते हैं, वे खरकंटक के समान होते हैं। दो, जैसे कठोर कांटों से लगी हुई बाढ़ से खेती की रक्षा होती है, खेती नष्ट करने वालों का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, वैसे ही जो श्रमणोपासक चतुर्विद श्री संघ पर होने वाले मिथ्या दृष्टियों के आक्रमण को रोकते हैं, चतुर्विद श्री संघ को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाने देते, वे भी खरकंटक के समान होते हैं। तीन, जैसे कठोर और तीक्ष्ण कांटा चुभे हुए दूसरे कांटों को भी निकाल देता है, उसी प्रकार जो श्रमणोपासक दूसरों के जीवन से माया शल्य, निदान शल्य तथा मिथ्या दर्शन शल्य निकालते हैं, वे भी खरकंटक के समान होते हैं। चार, जैसे यत्नशील को कांटा नहीं चुभता, यत्नशील को ही कांटा बुरी तरह चुभता है, उसी प्रकार कई एक श्रमणोपासक उग्रविहारी साधुओं के लिए नहीं बल्कि शिथिलाचारी श्रमण वर्ग तथा श्रावक वर्ग के लिए खरकंटक के समान बने हुए हैं, जो कि कठोर वचन बोलकर ही दूसरों को सावधान करते हैं, मधुरता और नम्रता से नहीं, वे श्रावक भी खरकंटक ही कहलाते हैं। जो माता पिता की तरह संत सतिया जी की गलती को उभार कर उनकी इज्जत नहीं गंवाते बल्कि उनकी इज्जत बढ़ाते हुए उन्हें प्रेम से समझाते हैं, वे ही सच्चे माता पिता होते हैं। श्रमणोपासकों को सावधान रहना जरूरी है कि साधु दोनों टाइम प्रतिलेखन, उभयकाल प्रतिक्रमण, चारों काल स्वाध्याय कर रहा है या नहीं, गोचरी कर रहा है या गधाचरी, हर बात के प्रति सावधान और सुधारने के लिए विनय विवेक दोनों हो। एक राजा के पास चार विद्वान आए, एक राजनीति का पंडित, एक धर्मशास्त्र का तो तीसरा आयुर्वेद का विद्वान, चौथा कामशास्त्र का पंडित था। सभी अपने अपने शास्त्र पर एक एक लाख श्लोक लिख कर लाए, सभी अपना अपना ग्रंथ राजा को सुनाना चाहते हैं, पर राजा का कहना है कि इसे कम करो। चारों पंडित आधा आधा करते चले गए, अंत में एक श्लोक चार लाइनों में चारों शास्त्रों का सार भर दिया। तब राजा सुनने को तैयार हुआ। राजनीति का पंडित बोला, बृहस्पति रविश्वास, बृहस्पति का कहना है कि राजनीति में किसी पर विश्वास मत करो, कोई भी धोखा दे सकता है, जैसा कि यूपी में मायावती और बीजेपी के सरकार के समय काया पलट देखा, विश्वास के बिना काम नहीं चलता, पर इतना विश्वास किसी पर मत करो कि उसका धोखा देने पर आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। इसका प्रैक्टिकल रूप बाप ने बेटे के साथ करके बतलाया। सारे धर्मों का सार है दया। भगवान महावीर ने दुनिया की रक्षा के लिए उपदेश दिया था, तुलसीदास जी के अनुसार सभी धर्मों का मूल ही दया है। मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यानी सबकी रक्षा करो यह बतलाया है। आयुर्वेद के आचार्य आत्रेय ऋषि ने कहा, सभी रोगों का एक ही समाधान है, लंघ परमौषधम, उपवास करना ही परम औषध है। कामशास्त्र के लिए पांचाल ऋषि बोले कि अगर किसी भी स्त्री को अनुकूल बनाना हो तो प्रेम से काम लो। झगड़ा, अपमान, अपशब्द बोलने से औरत की बुद्धि कुंठित हो जाती है। प्रेम ही सब बातों का समाधान है। बचपन में माँ अच्छी लगती है, तारांकन। जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, तारांकन। बुढ़ापे में पोता अच्छा लगता है, तारांकन। मृत्यु के समय परमात्मा अच्छे लगते हैं, तारांकन। सिर्फ मृत्यु के समय परमात्मा अच्छे लगना उचित नहीं है, तारांकन। परमात्मा तो हर वक्त अच्छे हैं, सच्चे हैं, हम बच्चे हैं, कच्चे हैं, लेकिन परमात्मा अच्छे और सच्चे हैं, तारांकन। हर वक्त परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए, तारांकन। पर्युषण पर्व में सुबह शाम दिन में घर में हो या बाजार में नवकार मंत्र की माला अवश्य फेरो। परमात्मा का जाप आपकी सभी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन जाप शुद्ध उच्चारण के साथ होना चाहिए। भाष्य में एक कहानी आई है। हर दिन एक सेठ के काफिले के चारों तरफ रात्रि में 35 व्यक्ति पहरा देते थे। 35वें व्यक्ति की गर्दन नहीं थी, धड़ ही थी। यह सब रात में चोरी करने आए चोरों ने देखा। उन्होंने यह करिश्मा सेठ को बतलाया तो उन्हें ध्यान में आया, वे रात को प्रतिदिन एक घंटा नवकार जाप करते थे, पर एक अक्षर का उच्चारण अशुद्ध था, जिससे एक घुड़सवार के गर्दन नहीं थी, शुद्ध उच्चारण होने पर गर्दन आ गई। अतः उच्चारण शुद्ध करें। नमो अरिहंतान सर्वमान्य है तो शुद्धि के नाम पर अरहंतान अरुहंतान का उच्चारण करना सही नहीं है। चार बोल बड़े अनमोल, चार खड्डे होते हैं जो कभी नहीं भरते, पेट का, शमशान का, समुद्र का और तृष्णा का। पेट का खड्डा भरता तो नहीं है, लेकिन अन्नदान को महादान कहा है, प्रथम दान कहा है। सभी को खिलाने वाले के बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। उदयपुर में धर्मवीर नररत्न श्री लोकेश जी चौधरी की घटना सामने है। इनकम टैक्स के बड़े हादसे से वो बच गए थे।